واقع فرمایا کہ وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں. یہاں سے آگے تقریباً 9 آیات میں اللہ تعالیٰ نبیوں اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد اور قوموں کے جھٹلانے اور نبیوں کے اس کے اوپر صبر کرنے کے بعد اب عمومی قانون بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ قوموں کے ساتھ کیسے ہوتی ہے, کیا حالات ہوتے ہیں, کیسے. ایک سٹریچ میں ہلکا سا ان آیتوں کو دیکھ کر پھر ہم اس پہ ایک مجموعی طور پہ بات کر سکتے ہیں اور اپنے حالات کے مطابق اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب قومیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو جھٹلاتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہی وعدہ اللہ کا نبیوں کے دور میں تھا اور یہی بات میں نبیوں کے فالوورز کے دور میں کہ قوموں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے. بات شروع ہوتی ہے وما ارسلنا, اور نہیں بھیجا. یہ انداز بات میں شدت کے لیے ہوتا ہے, مراد یہ کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوا. جیسے اپنے آپ بچوں کو اکثر مائیں کہتی ہوتی ہیں, کیا میں نے تمہیں کہا نہیں, پہلے نہیں کہا تھا. تو نہیں کے ساتھ بات کی جائے تو شدت ہوتی ہے, جیسے لا الہ الا اللہ میں ہے, نہیں کوئی الہ مگر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کو ذرا مزید ہمارے شعور کے اندر واضح کر دیا کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوا. فی قرية من نبی, کسی بھی بستی میں کوئی نبی, کیا پتہ چلا کہ نبی جو بھی آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اور کہاں آتے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے. یاد رکھیں یہ انسانوں کا مقدر ہوتا ہے, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چنتا نہیں, اور جس کو چنتا ہے اس کو کہاں جا کے اللہ کی بات کرنی ہے کہنی ہے یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. حالات اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے, انسان کوشش کرتا ہے, لیکن کوشش کے بعد فائدہ اسی کی کوششوں کا ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے. اس لیے زمین کے جن ٹکڑوں پہ ہم نے نیکی کرنی ہوتی ہے نا, ہم وہیں بیٹھیں گے. جب تک ہمارے نصیب میں کوئی جگہ ہوتی ہے ہم وہیں بیٹھتے ہیں. کتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں پھر آپ بالکل ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. کتنی جگہوں کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں نہیں ملتی, کئی چیزوں کی کوشش نہیں ہوتی وہ مل جاتی ہیں. یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے. جیسے انسانوں کی تقدیر اور قسمت ہوتی ہے اس طرح زمین کے ٹکڑوں اور بستیوں کی بھی جگہ ہوتی ہے. تو اگر مدین میں ایک نبی آئے اور ایک نبی جو تھے وہ حجاز میں آئے تو یہ سراسر اللہ کا فیصلہ تھا. اب نبی آ گئے, آگے کچھ نہیں لکھا ہوا کہ نبیوں نے کیا کہا کیا ہوا, کیونکہ یہ بات پیچھے ہو گئی. کیونکہ بس لفظ نبی ہی بتا دیتا ہے کہ انہوں نے وہی کہا ہوگا جس کے کہنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوگا. لیکن یہاں مضمون سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی آئے, انہوں نے اللہ کا پیغام دیا اور قوموں نے نہ مانا, پھر کیا ہوا. الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء, ہم نے پکڑ لیا وہاں رہنے والوں کو باس اور درر کے ساتھ. دو لفظ آئے ہیں, باسا اور ایک درا, دونوں لفظ ہم معنی بھی ہیں اور بعض جگہ مختلف معنی بھی دیتے ہیں. باس کا لفظ یہ وہ سے ہے, با حمزہ سین اس کا روٹ ہوتا ہے, اور درا کا لفظ درر سے ہے, ضرر جس کو اردو میں ہم بول دیتے ہیں. دونوں ہی طرح سے یہ لفظ بولا جاتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ بوس اور باس کہتے ہیں فقر اور فاقہ کو, مالی کمی یعنی اکانومی خراب ہو جانا, فصلوں کا خراب ہو جانا, قحط پڑ جانا, ضروریات زندگی جو ہے وہ نہ سامنے رہے, وہ بھی پوری نہ ہو. اور درہ, اور درہ کا معنی ہوتا ہے بیماری اور مرض, تکلیفیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں تو ان کے یہی معنی ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہ پھر بوس اور باس مالی نقصان کے لیے بھی آتا ہے, اور ضرر اور درر جو ہے یہ جانی نقصان کے لیے آتا ہے. مطلب کیا ہے کہ قوموں کی پکڑ اچانک نہیں ہوتی اور ایک ہی سٹریچ میں نہیں ہوتی. پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے, حالات تیار کرتا ہے. نبیوں کا پیغام عام ہوتا ہے, ان کی رینج میں ہوتا ہے, جس زبان کو وہ جانتے ہیں پیغام اسی میں آ جاتا ہے. ہر بندے کو اس کے لیول تک پہنچانے کے لیے بات کرنے والے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے. لوگ نہ مانیں تو پھر اللہ کی پکڑ کے دو راستے ہیں. بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے. ہر بندہ اپنی ذاتی زندگی سے لے کے قومی زندگی और आलमी जिंदगी आलमी दुनिया में इस कानून को सख्त होता हुआ देख सकता है कि जब कोई बंदा हक का झुटला दे, हक की बात ना माने, तो पहली पकड़ क्या होती है? बास और दरर, तकलीफ, दुख, गम, मुसीबत, कभी जान के, कभी माल के, कभी दूसरी तरफ, कभी तीसरी, यानी सख्तियों का शिकार हो जाता है इंसान। अल्लाह ताला उसके ऊपर मुश्किल किस्म की मुश्किलात डाल देता है, वो कोई भी हो सकती हैं, कहत, सैलाब, मादी अशिया और इस तरह की इनकी कमी होनी। लेकिन जब लोग आती क्यों हैं ये तकलीफें, लाल लहुम यद्दर्राउन, मेरी तरफ आ जाए, आजजी करें, इस बात को समझना हो तो अपने बच्चों को देख लें, बच्चे को थप्पड़ लगा के देखें आप, फिर माँ की ही गोद में घुसेगा, ये है लाल लहुम यद्दर्राउन। अल्लाह कहता है कि मैं ही तुम्हें कोई तकलीफ दूं और मेरा ही दामने रहमत पकड़ो, मेरे ही दर पे पना लो, मेरे ही दर के आगे सजदे करो कि मैं ही उसको दूर करूंगा। अल्लाह ताला तोड़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके अंदर का तकब्बुर ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे बाज़ बीमारियों का इलाज बिजली के झटकों के ज़रिए दिया जाता है, शॉक्स दिए जाते हैं, बाज़ लोग स्ट्रोक हो जाते हैं, उनको कोई ऐसा फालज का अटैक हो जाता है कि जिस्म काम करना छोड़ता है, तो फिर उनको स्ट्रोक्स दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तकलीफ़ें देता है, पकड़ाता है, उनको कहीं ना कहीं किसी मुश्किल में लाता है ताकि इनका गरूर टूटे, नशा उतरे, अपने माली वसाइल मादी वसाइल पे फख्र करना छोड़े, अपने आप को बड़ी ताकत कहना, बड़ा कहना छोड़े और अल्लाह की तरफ आ जाए। तो क्या पता चला कि बाज़ तकलीफ़ें इंसान को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए आती हैं। को बड़ी गहरी नींद सोता है ना, तो आप ज़ोर से जाके शोर मचाते हैं, उठो, चीख आती है तो उठ जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला भी बाज़ दफ़ा लोगों को इनफरादी ज़िंदगी में और बाज़ दफ़ा इज्तमाई ज़िंदगी में मुश्किलों में डालता है, और ये मुश्किलात इंसान के लिए रहमत होती हैं। जिस मुश्किल से रब मिल जाए वो मुश्किल आपके लिए मुश्किल नहीं, सबसे बड़ा इनाम बन जाता है। और बड़े ही खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनको हादसात ने, चोटों ने, तकलीफ़ों ने, इंसानों के सताने ने, शोहरों, बीवियों, बच्चों, औलादों, घरों के गमों ने अल्लाह की किताब से जोड़ दिया। अक्सर लोगों को आप देखें, अनयूजुअल लोग ही अल्लाह की किताब की तरफ आते हैं, इल्ला माशाल्लाह। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई मुश्किल आए तो फिर आएँ, इसलिए जवानी में अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए पेश कर दें कि अल्लाह हमें मुश्किलात में डाल के ना लाए। देखिए, हर बंदे को अल्लाह ने बख्शने का इरादा किया हुआ है, जिसके दिल, जिसने जितनी बड़ी बड़ी बातें की होती हैं ना, उसको अल्लाह ज़्यादा ही फिर पकड़ता है, इससे पहले कि पकड़े जाए खुदा जाए। मिसाल दूंगी कि एक बकरी है ना, उसके गले में मालिक ने रस्सी डाली हुई है और वो चंद फुट की है, उस रस्सी के की लंबाई के तहत वो इधर उधर घूम सकती है, जितना वो उस रस्सी की लंबाई से बाहर जाएगी ना, तो उसकी गर्दन घुटेगी। अखीर रस्सी तोड़ाने की कोशिश में इधर उधर जाके जख्मी हो के, परेशान हो के वापस आएगी ना, तो चोट खा के आई है, अब चुपके बैठी रहेगी। और अगर वो रस्सी ना तोड़ाती, उसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए अपनी जगह पे रहती, तो वो रस्सी की जो चुभन थी गले में पड़ने से बच जाती। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की ज़ात ने ये अपने लिए लाजिम किया हुआ है कि जिस बंदे के दिल में इखलास होगा, सच्चाई होगी, उसको मैंने अपनी तरफ बुलाना है, आएगा। जो खुद नहीं आते ना, फिर अल्लाह उनको बुलाता है ज़रर और बीमारियों और तकलीफ़ों से, परेशानियों से, ऐसी ऐसी मुश्किलात उनके ऊपर लाता है कि बाकी वो संभल जाते हैं। और असल खुशकिस्मती है ही ये कि बंदा मुश्किल में पड़ने से पहले ही रब की तरफ आ जाए। लेकिन वो भी शख्स खुशकिस्मत है जो मुश्किल में पड़े और रब को याद कर ले। लेकिन याद रखिए, मुश्किल आए तो रब को याद करना और बात है, और मुश्किल के गुजरने के बाद रब को याद रखना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। बहुत सारे लोगों को मुश्किलात में रब याद तो आ जाता है, लेकिन मुश्किल गुजरने के बाद याद रहता नहीं है। तो ये भूला व सबक बार बार याद करने की ज़रूरत होती है, इसलिए अल्लाह ताला परेशानियाँ लाता है। कोई ज़िंदगी का ऐसा तजुर्बा याद करें जिसने पकड़ के आपको अल्लाह से जोड़ दिया, आपको नमाजी बना दिया, आपकी ज़िंदगी से बुराइयों को निकाल दिया, तो मुसीबत इंसान के लिए उस्ताद बन जाती है, अगर इंसान मुसीबत से सबक हासिल करे। जो यहाँ आ जाते हैं ना, वो बच जाते हैं, लेकिन इसके बाद अगला इम्तिहान बड़ा मुश्किल है। आप कहेंगे इसके बाद और क्या होगा, जरर तकलीफों के बाद इससे भी कोई बड़ा मुश्किल इम्तिहान है? हाँ जी है। ये सेकंड टेस्ट किसको देना पड़ता है? जो पहले टेस्ट में फेल हो जाते हैं, सप्ली है, आप कह लें मेकअप टेस्ट है, सेकंड टर्म कह लें, जो पहली पकड़ की किस्त से फायदा नहीं उठाते और अल्लाह की तरफ नहीं झुकते, तो इससे बड़ा टेस्ट आता है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं अब होना क्या है, अल्लाह ताला से ही पूछ लेते हैं कि सुम बदल न मकान सैयत हसना, अल्लाह अकबर, फिर हम बुरे हालात की जगह अच्छे हालात ले आते हैं, हत्ता अफाउ, यहाँ तक के वो फलने फूलने लगते हैं, खूब बढ़ोतरी होती है। ये है दूसरा पर्चा, नेमतों का पर्चा। जो नहीं समझा फिर अल्लाह उसके हालात बदल देता है। अफवा का लफ्ज यहाँ आया, सैया का लफ्ज पहले देख लीजिए, पीछे भी बहुत जगह आया, यानी वो फकर फाका, बीमारी, बदहाली जिसका जिक्र आया था वो यहाँ सही है। और हसना से मुराद इसके बिल मुकाबिल नेमत, माल में कमी थी तो वसत हो गई, बीमारी थी तो सेहत और सलामती हो गई, और इतने अच्छे हालात हो गए कि हत्ता अफ बढ़ने लगे। ये लफ्ज तवज्जो तलब है, आइन फा वाओ इसका रूट है। ये अरबी के उन लफ्जों में से हैं जिसके एक ही वक्त में दो मानी होते हैं, ऑपोजिट, इसको अजदाद बोलते हैं, जिद की जमा, यानी एक ही मानों में ये बढ़ने का मानी दे रहा है, तरक्की करने का, और दूसरी तरफ कमी का मानी भी देता है। अरबी में ये लफ्ज बहुत जगह आता है। आप कह सकते हैं कि इसका एक मानी है मिटा देना, मिटा देना, टू रब, जैसे रबर के साथ रब करते हैं ना, बिल्कुल वाइप आउट कर देना, और दूसरा इसका मानी है बढ़ जाना, बढ़ा देना, इंक्रीज के मानों में। हदीस में दाढ़ी के लिए ये लफ्ज आए हैं कि दाढ़ियों को के साथ अफ का मामला करो, यानी उसको बढ़ाओ। इसी तरह अरबी जुबान में बोला करते हैं लोग अफल नबात, घास बढ़ गया, या दरख्त किसी जगह बहुत बढ़ जाए तो अफा का लफ्ज बोल के नबात का लफ्ज बोलते हैं। इसी तरह अफो शहम वल वब्र, जानवरों की चर्बी और बाल बढ़ जाए तो ये लफ्ज बोलते हैं। यहाँ ये मानी आया है फूलने के माने, फलना फूलना, हमारे यहाँ जिसको नशो नुमा कहते हैं, यानी इनामात के दरवाजे खुलते हैं, फिर हर दिन उनके घर में दौलत की रेल पेल होने लगती है। ये बिल्कुल वही बात है जो पीछे सूरत अल अनाम में आपने पढ़ी थी कि फलम्मा नसूमा ज़ुक्किरू बिही, पर जब वो भूल गए जिस बात की उनको नसीहत की गई, तो फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शयइन, तो हम उन पर हर नेमत का दरवाजा खोलते हैं। ये पर्चा बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल आती है ना, तो लोग उसको आजमाइश समझते हैं। खुशी मिलती है, खुशहाली मिलती है, औलाद मिलती है, शादी हो जाती है, रिश्ता आ जाता है, अच्छा नया बड़ा घर मिल गया, जॉब मिल गई, तो लोग उसको आजमाइश ही नहीं समझते। इज इट ट्रू? किसी के घर बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा नहीं है तो लोग कहते हैं हाय बेचारे की बड़ी आजमाइश है, बेचारी की बड़ी आजमाइश है, बेचारा तो दूसरी कर लेगा। हाँ, बिचारी की बड़ी आजमाइश है। आप कहते हैं अच्छा, आप कहते रहे, आपका एंगल और है, आपको क्या पता अल्लाह ने उसमें क्या खैर रखी है, लेकिन बिलफर्ज किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए और आप गए बच्चे को देखने, और जाते ही आप कह दें कि अल्लाह ही आपको इस आजमाइश में पूरा करे, तो मेरा ख्याल है कि वो आपसे नाराज हो जाएंगे। क्या आप हमारी खुशी को आजमाइश कहते हैं? हालांकि हकीकत क्या है कि हर बच्चा इम्तिहान का एक पर्चा। गौर करें कि क्या किसी पर्चे में फेल तो नहीं हो रही? चार पर्चों में पास हो जाएंगे ना, जब पांचवें में फेल होंगे तो अगले दर्जे पे जाने से रुक जाएंगे। इसलिए सारी औलाद का फिक्र करें, किसी एक को पकड़ के हिफ्स पे ना डाल दें कि चलो कुछ आखरत बन जाए। लेकिन हकीकत ये है कि हर नेमत आजमाइश है, इसमें रुजू ही नहीं होता, इसमें वक्त ही नहीं होता। नेमतों की दूसरा एक और फर्क देखें कि जैसे पहला तो हमने देखा ना कि आजमाइश आती है तो उसको आजमाइश समझते हैं, नेमत को आजमाइश समझते नहीं। फिर दूसरी एक और चीज़ होती है कि जब हम किसी मुश्किल में आते हैं ना, जैसे जो पहले जिक्र हो गया, अब दोबारा नहीं बार बार बोलती इसको, यानी सही आता है, तो उस वक्त हमारे पास वक्त बहुत होता है। अमूमन देखे जो लोग बीमार हो जाते हैं वो बेचारे बिस्तर पर लेटे रहते हैं, अब कोई कितना को दिल बहलाएगा, आखिर वो खुद ही थकते हैं, तो वक्त बहुत है ना, चांसेस मिल जाते हैं उनके पास, उनको नमाजों के, दीन के, सुनने के, पढ़ने के, बोलने के। लेकिन जब आती है सेहत तो हमारी तो दौड़ ही नहीं खत्म होती, इधर से जाओ उधर जाओ, उस गाड़ी में बैठ उसमें जा। जब पैसे कम होते हैं, फकरो फाका आया तो क्या हुआ, वो सारे छट जाते हैं जो चाय पीने आते थे और केक खाने आते थे। मेहमान नवाजी कम हो गई। यानी किसी ने कहा कि जब घर हालात अच्छे थे, खानदान का सबसे ज्यादा जो जोर था वो हमारी तरफ था। कोई बाहर से आता था साथ बेगाना, वो हमारे घर रात दो रह के नहीं जाता था तो उसको खुशी नहीं होती थी। और अब जरा हाथ तंग हुआ है तो बाद में पता चलता है फलां बाहर से आके चला भी गया। मशवरे तो क्या करने, लोग बाद में बताते भी नहीं है कि ये फैसला खानदान का हो गया, खुद ही चटने लगते हैं। और जब दुनिया की रेल पहल है, माल दौलत है, वक्त ही नहीं मिलता। यानी वक्त छिन जाता है, एनर्जी, स्किल्स। आप आजमाए, एक बंदा जॉब ना करे, यानी बंदे से मुराद बंदी, और एक बंदी को जॉब मिल जाए, आपने रवैयों में फर्क देखा है? जमीन आसमान का फर्क है। आपको वो चीज जो कल आपकी आंखों के आंसू बने हुए दिखती थी, अब आपके सोने का वक्त ही नहीं, क्योंकि आपको तो अपनी नींद पूरी करनी है कि सुबह आपको 6-7 बजे घर से निकलना है, और शाम को आप इतने थके हारे आए कि आपके इस वक्त ही नहीं। आप कहते मैं जॉब के साथ भी कुरान कर लूंगी, कहाँ कर लेंगे, आप तो 5 वक्त की नमाज वक्त पे पढ़ लें तो ही बड़ी बात है। ऐसी चीजों में फिर बंदे की पकड़ होती है, फिर अल्लाह ताला उनको खूब पकड़ता है। और देखो, कभी आपने रेशम का कीड़ा की उसके बारे में कुछ जाना, रेशम के कीड़े को, इसके मुंह से एक लुआब निकलता है, उसको अपने इर्द गिर्द एक तार बुनता है। इस तरह मुंह से लुआब निकलता जाता है, उसका एक गेंद फुटबॉल बनाता रहता है। और आपको पता है कि जिस दिन उस फुटबॉल के अंदर आखिरी तार लगता है ना, तो अंदर ऑक्सीजन जानी बंद होती है और वो रेशम के कफन में मर जाता है। अंदर वही रेशम उसका कफन बन जाता है। यही इंसानियत के साथ भी हो रहा है। तरक्कियां, इन्वेंशंस, दौड़ धूप, भाग, नेमत, ये दिस दैट, असल में ये सारी जिंदगी जिस कपड़े को बुनते रहते हैं उसी का कफन पहन के कब्र में चले जाते हैं। ये जो आसाइशें हैं ना, ये जो लग्जरीज हैं, ये हमारी रूहों के मकबरे बन जाती हैं। ठंडी आहें भरते हैं लोग, दौलत सुकून नहीं देती, औलाद सुकून नहीं देती, बड़े घर सुकून नहीं देते। सुकून मिलेगा तो उसको ही मिलेगा जिसने अपने रब को पा लिया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ठंडक है तो उसके दिल में है। ना औलाद आंखों की ठंडक, ना माल आंखों की ठंडक, ना घर आंखों की ठंडक। और जो सारी जिंदगी आसाइशों को पाने के लिए अपनी जिंदगी को दोभर करते हैं, उनको चंद गज जगह नहीं मिलती अपने घर में, अपने ही मकबरे के लिए। वो एक शेर बचपन में कहीं पढ़ा था, बड़ा मुझे उसका अच्छा लगता है, शेर का मफहूम ही आएगा, शेर तो सही नहीं मैं पढ़ूंगी, लेकिन उसका खुलासा क्या कि दुआ बहार की मांगी तो इतने गुल खिले मेरे आशियाने में। यानी मेरे बाग में मैंने बहार की दुआ मांगी तो इतने ज्यादा फूल खिले कि कहीं जगह ना मिली है मेरे आशियाने को, कि फिर मेरे घर की जगह ही नहीं पड़ी, फूल ही फूल खिल गए। ये दुनिया का हाल है। हम दुनिया इतनी बढ़ाते हैं ना बच्चों की अपनी, उनके लिए अब हमारे लिए जगह नहीं रहती। और फिर नमाजें कौन पढ़े, कौन सहरी में उठे, कौन उठे। जिसने खुली छत में सो के फजर भी पढ़ ली, तहज्जुद भी पढ़ ली, वो एसी में से उठ के अगर फजर के 4-2 फर्ज पढ़ ले तो बहुत हुआ। और हुआ क्या कि वही आराम जो हमारी गफलत का जरिया बन गया। मुर्दा कौमों का हाल यही होता है। वो सबर और शुक्र की सिफात से आरी होने लगती हैं। हम कहते हैं नेमतों का छिनना आजमाइश है, अल्लाह कहते हैं ये छोटी आजमाइश है। नेमतों का बेतहाशा बरसना ये बड़ी आजमाइश है, ये अल्लाह की नाराजगी है। और जब ये होता है तो फिर सोच बदलती है, और ऐसे लोग फिर अल्लाह की तरफ से इस तरह पकड़े जाते हैं कि उनको होश ही नहीं आती कि हम कहाँ गए हैं। होश कब आती है? फाखजना हम बख्तन, फिर हम अचानक पकड़ते हैं, खूब झटका लगता है, फिर एक आंखें खुल जाती है। जैसे सोते बंदे को कोई एकदम शोर मचा के उठाता है ना, इस तरह उस सोते हुए इंसान को अल्लाह ताला झटका कोई देता है और फिर वो उठता है। और फिर होता क्या उसके साथ? वहुम ला यशऊरून, शऊर से खाली, कुछ होश नहीं रहती, किधर थे, कहाँ थे। एकदम गहरी नींद से जो उठता है ना, उठता है, कहाँ हूँ मैं, किधर हूँ, क्या वक्त हो गया। कभी आप बड़े थकार के सोए ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैं सुबह का सो के उठाऊँ या रात का सो के उठाऊँ। मगरिब का वक्त अगर हो जाए आपके उठने में, तो आप कहते हैं हाय सूरज निकलने वाला है, ये नहीं पता कि सूरज जाने वाला है। इतनी मदहोशी होती है गहरी नींद में। और आप जितना थक के सोते हैं ना, उतने बेहोश सोते हैं। इस तरह जब आप दुनिया के पीछे भाग भाग के सोते हैं ना, तो वो गफलत इतनी बड़ी गफलत होती है कि आपको होश ही नहीं होती। आप अपने ऊपर रहम खा रहे होते हैं, हम कहते हैं मेरी हालत कोई नहीं समझता, मैं बीमार हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी होती। भाग क्यों रहे हो इतना? क्यों अपनी जान पे बोझ रखा हुआ? 5 किलो का वजन उठा सकते हो और तुम 20 किलो का वजन उठा के भाग तो नहीं सकोगे, फिर तो हांफोगे, फिर सुकून नहीं आएगा। आज इंसानों का यही हाल है कि फिर वो बेशौर होने लगते हैं, कुछ उनके हाथ में नहीं रहता, कुछ उनको मिलता नहीं है, और ऐसे वक्तों में फिर वो अपने आप को मुतमईन करते हैं कुछ बातों से। और वो क्या बातें? थोड़ी सी बात इसी के अंदर रह गया था उनका जुमला, उसी को दोहराऊंगी। जब पकड़ आती है ना, खूब फलने फूलने लगते हैं, हत्ता अफव, तो क्या कहते हैं? वकालू, और उन्होंने कहा, कद मस आबा अनदर राउ वसर राउ। कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, हमारे माँ बाप के ऊपर भी अच्छे और बुरे दिन तो आते थे। फिर लोग ये कहते हैं, ये जलजले ये तो आते ही हैं, ये तो जमीन इतने साल के बाद कुछ चेंजेस से गुजरती है, फिर जलजला तो आना है। और वो फलां मुल्क ने अपने पानी के बंद खोल दिए थे तो हमारा मुल्क पानी से भर गया, इट्स नो प्रॉब्लम, इट्स मदर नेचर। फिर ये बातें करते हैं, ये तो बड़ों की बातें हैं, कोई वक्त एक साथ तो रहता नहीं, कभी अच्छे दिन आ जाते हैं, कभी बुरे आते हैं। यानी तकलीफों मुसीबतों से इबरत हासिल करने और अपनी इसलाह की तरफ तवज्जो करने की बजाय दिलों को तसल्ली देते हैं कि ये तो होना ही था और इसमें हमारा कोई नहीं। कोई नुकसान जिंदगी में आए, कोई तकलीफ आए, हम फौरन क्या सोचते हैं और सोचना क्या चाहिए? सोचें अगर आपकी जिंदगी में कोई नुकसान आया, कोई आपकी आपको कोई दुख मिला, बीमारी आई, पहली सोच उसके बाद क्या आती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना, ये ना खाता तो बीमार ना होता, ये ना पहनता उधर ना जाता तो हादसा ना होता, यही सोचते हैं ना। कितने लोग सोचते हैं उस वक्त कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मिसाल देती हूं कि गाड़ी, अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, हादसा आ गया, अब आप क्या सोचेंगे? वो मैं इस सड़क पे से ना जाती तो इधर जाती तो ये नुकसान ना होता, इधर से फंसती इधर, ये ना होता वो ना होता। मिसाल दे रही हूं ना, असल सोच उस वक्त आनी चाहिए कि क्या अल्लाह मैंने इस गाड़ी की नेमत का कोई मिसयूज तो नहीं किया। कहीं किसी वक्त मस्जिद से आवाज आ रही थी हय्या अलस्सलाह की और मेरी गाड़ी उस वक्त किसी मॉल के आगे तो नहीं रुक गई, क्या मैंने मिसयूज तो नहीं किया? आप कहेंगे नहीं, गाड़ी में बहुत दफा नमाजों के लिए जाते हैं। देखिए, बहुत दफा को नहीं अल्लाह देखता, अल्लाह किसी एक वक्त को पकड़ लेता है। हो सकता है वो नेमत किसी वक्त मुझे अल्लाह की बात सुनने से रोक दे, अल्लाह की याद से रोक दे। हर बंदा अपने अंदर ये दुआ मांगे कि अल्लाह ये फहम दे कि मेरा कोई चीज जाए तो मैं उस वक्त पहली सोच ये दिल में आए, इस चीज की वजह से जरूर मैंने किसी अल्लाह की बात को नहीं सुना। कोई एक मिनट, कोई एक लम्हा, कोई एक घंटा, कोई एक दिन हो सकता है जब किसी नेमत को पालने पोसने में लग जाते हैं, उसी के लाड चक्कर में रह गए तो वो नेमत चली गई। अल्लाह ने क्यों छिड़वाई? ताकि देखो कि ये हुआ क्यों। फहसना हम बख्तन व हम ला यशरून, और ला शौरी में अचानक अल्लाह ताला वो चीजें ले जाता है। असल बात यह है कि खुशकिस्मत वो इंसान है कि जो नुकसान को छोटा नुकसान रखे। वो कब होता है? छोटे नुकसान के बाद तौबा कर ले कि अल्लाह अब आइंदा मैंने ऐसा नहीं करना कि मुझे फिर ही सजा मिले, और छोटे नुकसान को बड़ा करने वाला बड़ा ही बदकिस्मत है। और वो क्या है? वो कहता है एक नई गाड़ी खरीद लेंगे। क्या हुआ? किसी ने एक दफ़ा एक शेयरिंग की, एक कपल था, सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क में रहे और खूब माल जमा किया, फिर खूब सामान जमा किया, फिर अपने मुल्क में आए, शहर के बड़े पौश इलाके में पीस ऑफ लैंड लिया, ज़मीन का टुकड़ा, और वहाँ घर बनाया। ख्याल क्या था कि अब बहुत बड़ा सा घर बनाएंगे, विला टाइप, और वहाँ फिर रिश्तेदारों में रहेंगे, पता चलेगा कमा खा के आए हैं, आखिर इतना कुछ है। सर पे खड़े होके घर बनवाया उन्होंने, बेगम और अंगद सहर सर जो दोनों थे उन्होंने सब ये काम किए और खूब सजाने सजुने के लिए की, पूरा घर तैयार था और उसकी दावत की तैयारी थी कि अचानक जो बेगम थी उनको कुछ दिल का दौरा पड़ा तो उनकी डेथ हो गई। अब आप देखिए कि मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, ये ऐसा हुआ। इबरत क्या होनी चाहिए कि अल्लाह की बंदी चली गई जिसने इतने प्यार से अरमान से चीज़ें सजाई बनाई, लेकिन जो सोच उसके बाद आती कि उसके बाद अब वो एक ऐसी ही औरत और ढूंढ रहे हैं कि जो मेरे इस घर को और ज़्यादा अच्छा सजा सके। اللہ کے نبی نے فرمایا کہ السعید من وعید بغیرہ، سعید کہتے ہیں خوش قسمت کو، بڑی خوش قسمت ہے وہ شخص جو دوسرے کے حال سے عبرت لے لے. ہم دوسرے کے حال سے عبرت لے لیں گے تو اللہ ہمیں اس مشکل میں ڈالے گا ہی نہیں. اس لیے اللہ کے خاموش اشاروں کو پہچانیں، سمجھے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پہ پکڑتا ہے اور کیوں نہیں پکڑتا. اب اللہ کی مدد آنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى، اور اگر کاش کے بستیوں والے، قرآ قریت ان کی جمع ہوتی ہے، جمع مکسر ہے، یعنی جمع کے لفظ سے پتہ نہیں چلتا یہ جمع ہے لیکن وہ جمع ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک بڑا پیارا راستہ بتاتے ہیں کہ اتنا میرا اللہ تعالیٰ کہاں چاہتے ہیں کہ تمہیں ضرر میں ڈالیں، اللہ تعالیٰ کہاں چاہتے ہیں کہ تم تکلیفوں میں آؤ. اللہ تعالیٰ تو تمہیں ایک ایسا راستہ بتا رہے ہیں کہ جس پہ چل کر مصیبتوں، بیماریوں، دکھوں کے بغیر ہی تمہاری زندگی اچھی ہوگی، اور وہ راستہ ہے ایمان اور تقویٰ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى، اور اگر یا کاش کے بستیوں والے لوگ، آمنو ایمان لاتے، وَتَّقَوْا، اور تقویٰ اختیار کرتے، پرہیزگاری کرتے، اللہ کے بندے بن کے رہتے، گناہ ثواب کا فرق پتہ چل جاتا، جس طرح گناہوں سے رکتے ہیں اس طرح نیکیوں کے مواقع کو بھی پہچانتے، کیونکہ یہ تقویٰ کی تعریف میں آتا ہے کہ انسان گناہوں کو بھی پہچانے اور نیکیوں کے مواقع کو بھی پہچانے اور اس کی ناقدری نہ کرے. اگر یہ دو کام کوئی کر لے گا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو البتہ ہم نازل کرتے ان پہ برکتیں آسمانوں، آسمان اور زمین سے، خوب برساتے. یہاں لفظ دیکھیے برکات آیا، حالانکہ لفظ برکت اگر واحد میں بھی ہو نا تو یہ قسم کا جمع کا ہی معنی آتا ہے. بارہ کاف اس کا روٹ ہے. عربی ڈکشنری میں برکہ کہتے تھے اونٹنی کے کسی جگہ بیٹھنے کو. عربوں کی قسمت سنور جاتی تھی جہاں سے اونٹنی گزر بھی جاتی تھی. سب سے بڑی قسمت جو جاگی تھی وہ تو اس سینس میں ابو ایوب الانصاری کی جاگی تھی کہ ہجرت کے بعد جب سارے خواہش مند تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے، تو آپ نے کہا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی میں وہیں اتروں گا، اور پہلے ایک جگہ بیٹھی تو اٹھ گئی، وہاں اللہ کا گھر بن گیا، مسجد نبوی. پھر آگے گئی تو ابو ایوب الانصاری کے گھر سے گزر گئی، پھر پلٹ کے واپس آئی تو وہاں بیٹھ گئی، تو آپ اللہ کے نبی کے پہلے میزبان بنے. تو وہ برکت کا معنی ذہن میں رکھے. لیکن برکت کے لفظ کے اندر جو بات چھپی ہے وہ کیا ہے کہ تھوڑے میں زیادہ ہونا. برکت کا یہ نہیں مطلب کہ 10 لوگ آئے ہیں تو 15 کا کھانا پکا ہوا تھا اور وہ کافی ہو گیا. برکت کا مطلب یہ ہے کہ 10 لوگ آئے اور 5 کا کھانا 10 کو کافی ہو کے بچ بھی گیا. یہ ہوتی ہے برکت. اور اگر اس برکت کو کوئی سمجھ جائے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے یہاں آسمان اور زمین کی برکتوں کی بات ہے، تو پتہ کیا چلا کہ ایمان اور تقویٰ کسی قوم کی ترقی کے راستے میں حائل نہیں ہے، بلکہ وہاں اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کو لانے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں. جہاں ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے وہاں زمین اپنے پیٹ کے پوشیدہ خزانے اگل دیتی ہے، لوگوں کے قدموں میں ڈھیر دیتی ہے، اور آسمان اپنی نعمتوں اور برکتوں کو بے دریغ نچھاور کرتا ہے ایسی قوموں پہ. پھر ایسی نعمتیں آتی ہیں، آسمان بارشیں دیتی ہے اور زمین سے فصلیں اگتی ہیں. پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں. پھر ان کو دوسروں سے مدد نہیں مانگنی پڑتی. پھر ان کو بھاری شرائط پر قرضے نہیں لینے پڑتے. پھر ان کو دوسروں کی جوتیاں سیدھی نہیں کرنی پڑتی. اللہ اکبر. پھر وہ لوگ اللہ کے اوپر توکل کر کے اللہ پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس برکت کے کئی مظاہرے ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ آپ کے معجزات، کئی جگہ ایسا ہوا کہ ایک معمولی سے برتن کے پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو وہ پانی پورے قافلے کو کافی ہوا. یہ ایک معجزے کے طور پہ ہوئی. ایک موقع پہ جابر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی دعوت کی غزوہ خندق کے موقع پہ، جبکہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے، مجھے تو رحم آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں. کہنے لگی تھوڑے سے جو ہیں اور شاید تھوڑا سا گوشت تھا کچھ. کہا اچھا تم کھانا تیار کرو، میں اللہ کے نبی کو لے کے آتا ہوں. اور جب اللہ کے نبی گئے انہوں نے کہا آئیے آپ میرے مہمان ہیں، تو آپ نے کہا سارے ہی آ جاؤ. جب جابر نے دیکھا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، बीवी ने देखा अल्लाह के बंदे ये क्या कर रहा है, खाना तो दो तीन लोगों का है। कहा मैंने तो सिर्फ अल्लाह के नबी को कहा, तब अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। यदि उनको पता था कि अल्लाह के नबी ले आए तो कुछ ना कुछ होगा। और फिर अल्लाह के नबी ने जब उनकी परेशानी फांपी तो कहा कि वो जो खाना पका था उसको भी खोला तो नहीं, और तनूर को खोला तो नहीं। कहा नहीं, वैसे ही कहा अच्छा आने दो। फिर आप वहां गए और अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से उस खाने में इतनी बरकत डाली कि खाना डालते जाते और पतीली ऐसे जोश उबल रहा था उसमें, खाने का कमी नहीं हो रही, और रोटियां तनूर से निकलती रही निकलती रही, जब तक वो पूरे लश्कर ने ना खा लिया, खाना पूरा हो गया। ये मिसालें मिलती हैं, ये जाहरी है, क्योंकि बरकत का जहूर दो तरह से होता है ना, एक तो कि असल में हकीकत में चीज बढ़ गई जैसे इन वाक्यात में बढ़ती है, लेकिन बाज दफा बरकत ऐसी होती है कि बजाहर चीज दुगनी तिगनी नहीं होती, लेकिन थोड़ी में बरकत है। देखिए 10,000 कमा लें आप, अगर उसमें हराम का बीज लगा हुआ है ना, तो वो 10,000 भी कहीं भी उड़ जाएगा, और हलाल के साथ आप 1,000-2,000 कमाते हैं तो वो 2,000-3,000 आपके 10,000 पे काफी होता है। तो बरकत मिलती है नीयत से, बंदे के माल में, उसकी जान में, उसके वक्त में, काम में, सेहत में बरकत होती है। एक ही लुकमा इंसान खाता है वो उसकी कुव्वत और सेहत का बायस बन जाता है, और बाज दफा बड़ा ताकतवर खाना खाता है और पेट खराब हो जाता है। बरकत कहाँ गई? बरकत अल्लाह के हुक्मों से मिलेगी, तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। अल्लाह ताला फिर आसमान से बरकतें उतारता है, और आज मुसलमानों को ये सबक पढ़ाने की जरूरत है, ईमान और तकवा। इस आयत की तफसीर को अगर गली गली कोने कोने में उन मुल्कों के पहुंचा दिया जाए जो हर वक्त इसी गम का शिकार हैं कि वहां खाना नहीं पीना नहीं, तो आप देख सकते हैं कि क्या फायदा। आप कहेंगे अच्छा इसका वजीफा बना लें, तवीज बना के बांट दें पूरे पाकिस्तान में, नहीं, खोल के पी लें, नहीं। आमनु वत्तको, ईमान और तकवा, दो पैगाम उनको बढ़ा दें, दो सबक दे दें, आप देखेंगे कि पता चल जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही कन्फ्यूजन सा जहन में आ जाता है कि बाज दफा हमारे पास नेमतें आती हैं तो हमें कैसे पता चले कि ये इनाम के तौर पे मिली हैं कि अजाब है, सवाल है ना। और अमूमन हमने तो इसका एक बड़ा आसान सा जवाब दिया हुआ है कि जो मेरे पास है वो इनाम है, और जो तुम्हें मिला हुआ ये तुम्हारी आजमाइश है, तो ये दुरुस्त नहीं है। पता कैसे चलता है कि नेमतों के साथ सलूक क्या किया जा रहा है? अपनी हर नेमत को देखें और अपने सलूक को देख लें। इंसान उस नेमत को पाने के बाद रवैया क्या अख्तियार करता है, इससे पता चलेगा कि वो नेमत अजाब है या इनाम है। मसलन अगर नेमतें पाई, उसके साथ ही हिरस बढ़ गई, लालच बढ़ गया, तकब्बुर आ गया, नाफरमानी आ गई, बेखौफ हो गए, अल्लाह से दूर हो गए, तो समझ लें कि ये अल्लाह का अजाब है। और नेमतों के साथ अगर कनात, आजजी, मॉडेस्टी, शुक्रगुजारी और फरमाबरदारी और नेमतों को जिम्मेदारी समझना शुरू कर दिया, तो बस समझ लीजिए कि आपके लिए वो अल्लाह ताला का एक इनाम है। हर नेमत को इसके साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। फिर आप देखिए कि यहाँ दो लफ्ज आए, एक ईमान है और एक तकवा है। ईमान के साथ शरीयत पर अमल होता है, क्योंकि ईमान आता है फिर ही शरीयत पे अमल होता है ना, लेकिन जाहर में तो अमल है, शरीयत पे अमल कर लिया, लेकिन बातन में तकवा ना हो तो वो अमल करना भी फायदा नहीं देता, रूह मस्ख हो जाती है। बस आप नमाज पढ़ें लेकिन नमाज की रूह खत्म हो चुकी है, तो फिर ईमान तो है तकवा नहीं है। तकवा होता है ना तो अमाल की जाहरी शक्ल भी वही रहती है जो सुन्नत के मुताबिक होती है, और रूह भी वही रहती है जो अल्लाह के नबी सल्लम के जरिए से बताई गई। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने फिर ये पैगाम दिया कि काश तुम ईमान ले आते तो हम आसमान से बरकतें देते, लेकिन वलाकिन कस्सबू, बस उन्होंने झुटलाया, फ़ग़सनाहुम बिमा कानू यक्सिबून, फिर हमने इनको खूब पकड़ लिया उन कमाइयों पे जो वो करते थे। अब यहाँ देखिए एक साइकिल बनता है, आप अपनी नोट्स में एक दायरा बना लें। आप यहाँ खड़े थे, पहला हाफ सर्कल जो है ना वो क्या हुआ, तकलीफ, सैया, बासावत, दर्रा। इसके बाद अगर संभल गए, लाल्लहुम यद्दर्राउन, एक्टिविटी बनाया करें, इससे आपका जेन खुलेगा, आपके जेन में जो तस्वुर आता है ना आयत को उसको अपने कागज पे दे दे, इसी को माइंड मैप कहते हैं। यकीन करें कि अगर मैं तालिब इल्म बन जाऊं आपकी तरह दोबारा, तो मैं तो हर सबक की एक्टिविटी बना के ला के नोटिस बोर्ड पे लगाऊं। ये नेमते हैं ना, ये छिन जाएंगे हमसे अगर हम इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। जिस नेमत की कदर नहीं करेंगे वो चली जाएगी। अब इसको मैं बात कर रही हूँ ना, तो मेरे जहन में आ रहा है कि आप खड़े हैं, पहली पहला एक दायरा लगा सहिया का, उस कैच पे लिख लीजिए लालम यद्दर राव, आजिज हो जाओ, हो गए तो कहानी खत्म, फिर बरकात ही बरकात, फिर देखो मजे अल्लाह की नेमतों के, फिर देखो अल्लाह तुम्हें दुनिया में कितनी बरकतें देता है। नहीं करते, यही दायरा बड़ा होके आगे चल पड़ता है नेमतों की फरावानी। खूब खूब खूब, जब नेमतों की आजमाइश बहुत ज्यादा हो गई तो उसका अगला दर्जा क्या है, फहसना हम बिमा कानू यक्सिबून, साइकिल है हमारी जिंदगी में। ये जो कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, ये असल में एक साइकिल चल रहा होता है। कभी कड़वी दवाई देता है डॉक्टर, ठीक हो जाओगे, नहीं ठीक हुए अब मीठी गोली खाओ, जो उससे भी ठीक ना हुआ तो उसका हाल क्या है कि ये सो रहा है, इसके अंदर अब खूह खत्म हो गई। हम कहते हैं कि इनको अल्लाह ने पकड़ा इनकी तरक्की से, हालांकि अल्लाह ताला पकड़ रहा होता है लोगों को उनके बुरे अमाल से। हम कहते हैं काफिर इसलिए बुरे हैं कि ये बहुत ताकतवर है, बहुत माल कमाते हैं, बहुत अच्छे घर रखते हैं, हालांकि हकीकत ये है कि लोग अपने अमाल की कमाई से पकड़े जाते हैं। यहाँ जो यक्सिबून है ना, तो अमाल की कमाई के लिए आता है, और अमूमन गुनाह के लिए ये लफ्ज आता है। पैसा कमाने के जराए जब हराम हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की पकड़ आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है, और वो क्या, अफा अमीना अहलुल कुरा, क्या बेखौफ हो गए, न डर हो गए बस्तियों वाले, किस बात से, अयात यहुम बासुना बयातम वहुम नाइमून, कि वो उन पर आ जाए हमारा अजाब रातों रात के वक्त जबकि वो सो रहे हो। यदि लोग गुनाह करके अब गफलत की नींद सोने लगे, क्या अल्लाह के खौफ से इतने बेखौफ हो गए कि गुनाह करके भी इनको नींद आ गई, हालांकि सच्चे मोमिन को तो गुनाह के बाद नींद आती नहीं है। गुनाह हो जाए अगर तो उसकी तो रातों की नींद उड़ जाती है, वो तो रातों को उठ के अपने रब को मनाने लगता है, वो तो पुकारने लगता है। अल्लाह कह रहे ये गफलत की नींद सो गए नाइमून, वही अंदाज है जो सूरत अराफ के बिल्कुल आगाज में था कि ये वहां सोते रह गए। क्या इन्होंने ये सोचा कि हम अब इस बात के अंदर पकड़े नहीं जाएंगे, कुछ इनको फायदा ना हुआ, हालांकि हकीकत ये है कि इनके सोने से ये बचेंगे नहीं। अब अमीन अखलुल कुरा, क्या बस्तियों वाले इस बात से बेखौफ हो गए, अयात यहुम बासुना दुहम वहुम यलअबून, क्या चाहे उनके पास हमारा अजाब चाश्त के वक्त जबकि वो खेल तमाशों में मुबतला हों। बड़े लोग कौन से खेल खेलते हैं, या लबून का लफ सोच कैसे आता है, बच्चे कहीं समंदर के किनारे खेल रहे थे और समंदर की लहरें ऊपर आईं और डबो के ले गईं। यहाँ यल अबून से मुराद दुनिया के खेल तमाशे हैं, गाफिल लोगों की एक्टिविटीज बताई जा रही हैं जो आखिरत से गाफिल हो चुके हैं, जिनको दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल और तमाशा लगता है, इंजाम से गाफिल, इंजॉयमेंट के पीछे पड़ने वाले। अब देखिए बंदा जिस चीज़ में दिलचस्पी रखता है ना, वो उसका खेल बनता है। जिन औरतों को कुकिंग का शौक होता है, आप देखा करें वो कितना इंजॉय करती हैं खाने पकाते हुए। जिनको कपड़े सीने में मज़ा आता है, वो कहती हैं सब जाएं घर से मैं कपड़े सीऊंगी। जिस चीज़ में दिल होता है ना, वो खेल बन जाता है। तो जिनका खेल ही पैसा बन जाए, जिनको इतने गलत काम करके भी पकड़ का डर ना आए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के अजाब रात को सोते में भी आ सकते हैं और दिन के खेल तमाशों में भी आ सकते हैं। यहाँ फिर मक्का वालों ही को कह दिया और आज वालों को भी कह दिया कि अल्लाह की पकड़ से बेखौफ ना हो जाओ, रात को भी आ सकता है और दिन को भी आ सकता है। लेकिन असल बात यह है कि जो समझेगा वो इस धमकी से समझ जाएगा, और नहीं समझता तो वो तो बेखौफ है। अफा अमीनु मकरुल्ला, क्या ये बेखौफ हो गए, निडर हो गए अल्लाह की पकड़ से। बिल्कुल यही अंदाज सूरत मुल्क में भी मिलता है। अफा अमीन मन फिस समा, बेखौफ हो गए और डर नहीं लगता अल्लाह के बारे में, इतनी खुशफहमियों का शिकार हो। फला यामनु मकरुल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, तो नहीं बेखौफ होते अल्लाह की पकड़ से मगर वो कौम जो खसारा पाने वाली है। इससे पता चलता है कि अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हो जाना असल में खुद को खसारों में मुबतला करना। बात जानी रुकी, अवलम यहदी, क्या इन्होंने नहीं देखा, क्या यह हकीकत इन पे नहीं खुली, क्या रहनुमाई नहीं हुई इन बात इन पर इस बात की, क्या कि लिल्लज़ीना यरिसूना अल-अर्द मिन बादि अहलिहा, कि वो लोग जो वारिस हुए जमीन के वहां के लोगों के हलाक होने के बाद, यानी ये जो पिछली कौमें डूबी तबाह हुई हलाक कर दी गई, तो क्या लोगों ने ये बात नहीं देखी कि उन लोगों पर जो वारिस बने हुए थे इस जमीन के उसके असल मालकों की तबाही के बाद, क्या कि अल्लाह नशा सब ना हम भी जुनूबी, कि अगर हम चाहें तो इनको भी इनके गुनाहों पे पकड़ लें। यानी कौम नूह के बचे हुए 80 लोग क्या बेखौफ हो गए इस बात से, क्या बाइंदा किसी अजाब में ये नहीं पकड़े जाएंगे, क्या वो आखिरी तूफान था दुनिया में? और कौम आद के बचे हुए और समूद और कौम सवाले और लूत के बचे हुए लोग क्या इस बात से बेखौफ हो गए कि क्या बाइंदा अल्लाह ने नहीं पकड़ना? क्या ये अल्लाह की आखिरी पकड़ थी? क्या इसके बाद अल्लाह ताला ने अब अपने अजाब के मामले रोक लिए? मतलब यह है कि अगर आज किसी आफत में तुम नहीं मुब्तला हुए तो कल तुम पे भी टूट सकती है। आज के जलजले से तुम बच गए हो, एक जलजला तुम पे और भी आ सकता है। मुराद वही है कि जो पिछले लोगों के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। यहाँ लफ्ज़ देखिए यहदी आया है। यहदी का लफ्ज़ हुदा से है। हदा यहदी का मानी होता है निशानदही करना, बतलाना। पिछले वाक्यात ने क्या इनकी रहनुमाई नहीं की कि अब ये अपनी हालत को बदल लें? ये मुराद है। फिर आगे फरमाया وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ سن نہیں سکتے۔ کیا دل سنتے ہیں کہ کان سنتے ہیں؟ دل ساتھ ہو تو پھر کان سنتے ہیں، ورنہ آوازیں کانوں پہ پڑا ہوا ایک بوجھ ہے۔ آپ دل سے سن رہے ہیں نا، تو آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، اور جس کا دل نہ ہو، بچہ ادھر کوئی بیٹھا اس کے کانوں میں آوازیں تو آ رہی ہیں نا، سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ دل نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سننے کے لیے دل کو شامل کرنا پڑتا ہے، اور جس چیز کو ہم دل سے سنتے ہیں اس کو ہم بہرحال پھر ماننے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ پھر آخر میں فرما دیا تلک القرا، یہ ہیں وہ بستیاں، نقص علیک من انبائہا، ہم سناتے ہیں آپ کو ان کے حالات، نبا کی جمع انبا، خبریں، ولقد جاتہم رسلہم بالبینات، اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، پس ہرگز نہ ہوئے وہ کہ ایمان لاتے اس پر کہ جس کو اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ جب منہ سے نہ نکل جاتی ہے نہ تو ہاں میں نہیں بدلتی، یہ ایک اللہ کا بڑا انتقام ہوتا ہے۔ ویسے ایک بندہ جب ایک دفعہ ہدایت کے راستے سے منہ موڑ لیتا ہے نا، پھر اللہ نہیں آنے دیتا، آزما کے دیکھ لیں۔ کہتے ہیں اس کی نہ کو ہاں میں کیسے بدلوں؟ انا، شیطان، کیا رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ نہ ہو گئی، اب ہاں میں نہیں بدلیں گے۔ دل مان چکے ہوتے ہیں کہ نبیوں کی بات نہ مان کے نقصان کیا ہے، لیکن پلٹ کے نہیں آتے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافر قوم پر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ہدایت پہ نہیں آیا ہوتا نا، وہ اتنی تباہی نہیں مچاتا، اتنا نقصان نہیں دیتا ہدایت کے رستے کو جتنا ہدایت کی طرف آ کے چلے جانے والا دیتا ہے۔ آسان سی بات ہے، سمجھ سکتے آپ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو کسی جگہ آتا ہی نہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ کہے گا کیا؟ اور جو آ کے پلٹتا ہے وہ اسلام کی کتنی بری مثال دیتا ہے۔ جو کافر ہے وہ تو بولتے نہیں اسلام کے خلاف، اور جو اسلام پہ آ کے کفر پہ جائیں وہ دیکھیں۔ اور آج کے دور کا یہ ٹرینڈ ہے، لوگ پہلے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتے پھر پلٹ جاتے اور پھر اسلام کی بدنامی کرتے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، اور ہم میں ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پابندی نہیں پایا، کمٹمنٹ کرتے تو تھے نبھاتے نہیں تھے۔ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمانی پایا۔ اتنی باتیں، اتنا کچھ سنایا اللہ نے نبی کے ذریعے سے، آج ہم قرآن کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، پھر بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو وہی کام کرنے سے رکے ہوں جس پہ پچھلی قوموں کو پکڑایا گیا۔ دیکھیں، یہاں پھر اکثر کی بات ہے، میجورٹی۔ ہم کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، اللہ کہہ رہے ہیں میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی۔ اب یہاں کس عہد کی بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا؟ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ عہد سے مراد عہد ایمان ہے، کیونکہ جب بندہ عہد کرتا ہے ایمان کا تو اطاعت کی بات کرتا ہے نا۔ لا الہ الا اللہ ایک عہد ہے، پورا نہیں کر پاتے، اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، پانچ نبیوں کے قصوں کے بعد یہ بات آئی ہے، آگے چھٹا اور آخری قصہ اس سورت کا آئے گا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ جو طویل چلے گا۔ پتہ کیا چلا کہ قومیں سبق جب نہیں لیتی تو اللہ کو پھر اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے اور کہاں جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پوچھیں، سب کو بھلا دیں، ہم سارے نبیوں کے قصے پورے کر دیں، اپنے آپ کو رکھیں، گناہ کرتے وقت کتنا خوف آتا ہے، فجر کی نماز جب قضا ہوتی ہے تو خوف آتا ہے، بس میں بیٹھتی ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ بس اب کہیں حادثے سے دو چار نہ ہو جائے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خوف آتا ہے کہ یہ گاڑی کہیں میرے لیے موت کا پیغام نہ بن جائے، زمین پہ چلتے وقت ڈر آتا ہے کہ پاؤں پھسلا اور ٹانگ کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے، پتھر برستے ہوئے محسوس ہونے چاہیے انسان کو اپنے اوپر گناہ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے، اور گناہوں سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، یہ بد قسمت لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اب لوگوں کو نہیں پکڑتا تب تک جب تک وہ گناہ کرتے اور اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی پکڑ اس وقت آتی ہے جب لوگ گناہ کر کے بے خوف ہو جائیں۔ کیوں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غامدیہ قبیلے کی عورت نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ زنا ہو گیا حد لگا دے، کہا چلی جاؤ، پھر آئی اللہ کے نبی، بچہ بھی ہے پیٹ میں، بار بار آ رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی گناہ سونے نہیں دیتا، گناہ سونے نہیں دیتا۔ ہمیں آج کیسے نیند آتی، ہم کیسے گناہوں کے ساتھ سوتے، ہم انہی نعمتوں کو جن کو نعمت کہتے ہیں کہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی نعمتیں تو نہیں، چین کیسے آتا ہے ہمیں؟ ہم اپنے آپ کو پوچھیں، ہم اللہ کی نافرمانی سے ایک چیز حاصل کریں پھر اس چیز کو ہم استعمال کریں، ہمیں خوف نہیں آتا؟ ہم اتنا ہلکا کیوں لیتے ہیں؟ ہر بندہ جتنا اپنا محاسبہ کرے گا اتنا ہی دل کھلے گا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے کہ نتبع علی قلوبہم، ٹھپا لگا دیتا ہے، سٹیمپ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مہر چھاپنا، جیسے خط کے اندر لفافے میں خط ڈالیں اور آگے سے باہر سے بند کر دیتے ہیں، کچھ نہیں اندر جائے گا۔ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک گناہ کرتے ہو تو دل پہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا کرتے ہو تو نقطہ، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل گناہوں والا ہوتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، زان ران قلب کا زنگ، یہ ساری چیزیں مہر والی ہیں۔ آج آپ انسانوں کو دیکھیں تو اکثریت کا حال یہی ہوگا، ایسے شان بے نیازی سے اس چیز کو ٹھکرائیں گے کہ جیسے شاید کسی نے ڈرنک پوچھا کہ یہ پئیں گے کہ نہیں پئیں گے، اتنی بے اتنائی سے وہ دین کی دعوت کو چھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری فکر لگ جائے، اور سب سے بے نیاز ہو کر ہم دنیا کے حالات، دنیا میں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے اپنے لیے سبق حاصل کریں۔ یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔